आयु अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद रोहन से मिलने के लिए पास ही के रेस्टोरेंट में आई हुई थी। वहां बातों बातों में रोहन ने उसे कुछ ऐसे सबूत दिखाने के बारे में कहा जिसके दम पर वो आरफ को कसूरवार साबित कर सकता था। आयु आरफ को लेकर काफी परेशान थी, इसलिए सच जानने के लिए उसने हाँ कह दी। कुछ ही देर में आयु रोहन के साथ उसके घर पहुंच चुकी थी। उसका घर किसी साधारण से इलाके में 2 BHK फ्लैट था। वहीं पर उसका सीक्रेट ऑफिस था। वहां पहुंचते ही आयु चारों तरफ रूम में देख रही थी। वहां ज्यादातर रिसर्च से जुड़ा हुआ सामान रखा हुआ था। रोहन ने आयु के हाव भाव को नोटिस करते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, हम जैसे लोगों के पास तुम्हारी तरह बड़ा घर नहीं होता है। लगता है काफी मेहनत कर रहे हो, कोई वैलिड रीजन है या ऐसे ही आरफ खुराना के पीछे पड़े हो? आयु ने सार्केस्टिक वे में जवाब दिया, क्योंकि रूम में ज्यादातर आरफ से जुड़ी न्यूज के कटआउट्स ही लगे हुए थे। आयु की बात सुनकर रोहन धीरे से मुस्कुराया और फिर जवाब में कहा, कहा ना, पूरी बातें नहीं बता सकता। यूं समझ लो कि मुझे किसी स्पेशल केस के लिए असाइन किया गया था जहां आरफ खुराना का नाम निकल कर आया। मैं उसके नहीं बल्कि माहिरा लूथरा के पीछे था। उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए आरफ का नाम सामने आया। उसका नाम आगे आने के बाद मैं उस पर भी नजर रखने लगा। अगर माहिरा लूथरा इंडिया आती है तो सिर्फ और सिर्फ आरफ खुराना के लिए, बोलते हुए रोहन आयु को एक बड़े से बोर्ड के आगे लेकर गया। आयु को सब कुछ समझाते हुए रोहन ने बोर्ड पर पॉइंट करके कहा, हर हफ्ते इंडिया में इलीगल तरीके से ड्रग्स आता है, तुम्हारे पास भी काफी सारे केसेस आते होंगे। इंडिया का यूथ बर्बाद हो रहा है, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा ड्रग्स अगर किसी की तरफ से सप्लाई होता है तो वो लूथरा फैमिली की तरफ से है। लूथरा फैमिली के ड्रग्स और स्मगलिंग से जुड़े सारे काम माहिरा ही देखती है। लेकिन इन सब में आरफ का क्या रोल है? मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया था कि वो बस उसकी बिजनेस पार्टनर है, आयु ने जवाब में कहा। वो तुम्हें सच क्यों बताएगा? चलो इसे छोड़ो, जितना मैंने तुम्हें जाना है तुमने उसे जरूर पूछा होगा कि तुम दोनों कौन से बिजनेस से जुड़े हुए हो। उसने घुमा फिरा कर जवाब दिया होगा या जवाब दिया ही नहीं होगा। क्यों, ऐसा ही है ना? रोहन ने भौहें उठाकर पूछा। रोहन की बात का जवाब देने के बजाय आयु बिल्कुल चुप हो गई। रोहन सच कह रहा था। आयु ने जब आरफ से सच जानने की कोशिश की थी तब उसने इनडायरेक्टली उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। आयु को चुप देखकर रोहन ने कहा, तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम दोनों के बीच काफी कुछ हुआ है, पूरी बात बता क्यों नहीं देती? तुम्हारा ही फायदा है। हम दोनों अक्सर जहान के फाइट क्लब में मिलते हैं, कल हमारे बीच फाइट भी हुई थी जहां आरव ने मुझे हरा दिया था, आयु ने उसे आधी अधूरी बातें बताई। आयु के हारने की बात सुनकर रोहन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर सिर हिलाकर कहा, चलो इसी बहाने तुम्हें ये तो समझ आया कि तुम जहान की ट्रेनिंग से उसका कभी मुकाबला नहीं कर पाओगी। लिसन डॉक्टर, मैं तुमसे बस एक महीने का टाइम मांगता हूँ। हमारी ट्रेनिंग सेंटर में न केवल तुम्हें मेंटली बल्कि फिजिकली इतना स्ट्रांग कर दिया जाएगा कि तुम आराम से आरफ का मुकाबला कर सकती हो। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। उस चिप में क्या है तुमने तो मुझे ये तक बताया, जब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुम पर क्यों करूँ? आयु ने आँखें छोटी करके कहा। रोहन आयु को कुछ बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये उसके पास आखिरी मौका था जब वो उसे कन्विंस कर सकता था। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, होटल साज। उस रात होटल साज में सिर्फ अनुष्का की ही मीटिंग नहीं हुई थी, वहां के 10th फ्लोर पर एक और मीटिंग चल रही थी जो माफिया वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। मैं भी उस मीटिंग में वेटर के रूप में छुप कर गया था। अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले लोग काफी शातिर होते हैं, ये हर बार अपने काम करने का तरीका बदलते रहते हैं, और इस बार वो किस तरीके से काम करने वाले थे, उनके असाइनमेंट कहाँ जाने वाले थे, ये सब उसी मीटिंग में डिसाइड हुआ था। उस चिप में उसका पूरा डेटा था। उस डेटा के अंदर वहां की पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक उनके साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे, उन सब के बारे में डिटेल थी। वो अब आरफ के पास है और मुझे चाहिए। तुम अच्छे से जानती हो उसके जरिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ड्रग स्मगलिंग रुक सकती है, उन सभी करप्ट लोगों के नाम सामने आ जाएंगे जो लोगों को धोखा दे रहे हैं। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मेरी बहन को आरफ ने ही मारा है? आयु ने पूछा। वो सब कुछ कंफर्म करने के बाद ही रोहन को हाँ कहना चाहती थी। क्योंकि उस रात मैं भी टेरेस पर था, मैं उसके पीछे आया था और मुझसे बचने के लिए ही उसने अनुष्का को किस किया था। कितनी बार तो बता चुका हूँ, रोहन ने आयु पर चिल्लाते हुए कहा। वो बार बार सफाई देकर परेशान हो गया था। क्या तुमने उसे अनु को धक्का देते हुए देखा? मुझे सिर्फ सच सुनना है, आयु भी गुस्से में बोली। रोहन कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गया, फिर उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ मैंने देखा था, अनु उसके पीछे आ रही थी, गुस्से में आरव ने उसे धक्का दे दिया था, उसके बाद वो तुरंत वहां से भाग गया, बोलते हुए रोहन थोड़ा हड़बड़ा रहा था और उसके माथे पर पसीना भी आ रहा था। सारी बात जानने के बाद मानो आयु ब्लैंक हो गई हो। आयु की आंखों में आंसू थे, वो गुस्से में खड़ी हुई और रोहन का कॉलर पकड़कर चिल्लाकर बोली, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था और तुमने उसे रोका नहीं, तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, तुम चाहते तो उसे उसी वक्त अरेस्ट कर सकते थे। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आरफ से नहीं उलझना था, उस वक्त मेरे लिए अनुष्का की जान बचाना जरूरी ही था। जानना नहीं चाहोगी उसे हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कौन था? रोहन ने खुद से आयु को दूर करते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं जानना, बस इतना समझ आ रहा है कि सबको अपना फायदा निकालने की पड़ी है, चाहे इसमें किसी की जान जाए या कुछ भी हो, आयु रोते हुए बोली। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। आयु दरवाजे तक ही पहुंची थी तभी उसके कानों में रोहन की तेज आवाज पड़ी। मैं इंतजार करूंगा, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल ऑफिसर्स भी हायर कर लिए हैं, हो सके तो हॉस्पिटल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेना, मुझे बस 1.5 से 2 महीने का टाइम चाहिए। आयु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रोहन ने जल्दी से पानी पिया और खुद से कहा, मुझे पता है डॉक्टर, तुम मना नहीं करोगी। आई नो मैंने झूठ बोला कि मैंने आरव को अनुष्का को धक्का देते हुए देखा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास यही रास्ता बचा था। तुमसे चाहे मुझे सच मत बताओ, लेकिन उस रात फाइट क्लब में मैं भी था जब आरव ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। मुझे हर हाल में वो चिप चाहिए और आरव खुराना से अपना बदला भी, फिर चाहे इसके बदले में मुझे तुम्हें मिसेस खुराना भी क्यों ना बनाना पड़े। रोहन ने अपने फायदे के लिए आयु से झूठ बोला था, लेकिन वो नहीं जानता था उसके झूठ का क्या असर होने वाला है। इस वक्त उसे सिर्फ अपना फायदा दिख रहा था। आरव का सच जानने के बाद आयु पूरी तरह टूट गई थी। वो किसी पार्क में बैठी थी और रो रही थी। उसके पास मंथन भी था। रोहन के घर से निकलते ही आयु ने मंथन को मिलने के लिए मैसेज किया था। अब मंथन उसके पास बैठा कब से उसके रोने का कारण पूछ रहा था। मंथन ने आयु का हाथ सहलाकर कहा, पिछले आधे घंटे से ऐसे ही रोए जा रही हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, अब तो बता दो कि क्या हुआ है। मंथन के छूने पर आयु जैसे होश में आ गई हो, उसने मंथन को गले लगाया और सुबकते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद को खो दिया है। मंथन ने आयु के बालों को सहलाकर कहा, बहुत याद आ रही है उसकी।
मैं उसे भूली ही कब थी, वो खुद से मुझसे दूर नहीं गई थी, किसी ने अपने फायदे के लिए मुझसे उसे छीन लिया, आयु ने जवाब दिया। उसके कानों में अभी भी रोहन की बातें गूंज रही थी और आंखों में आंसू के साथ आरव के लिए नफरत भी थी। ऐसे मत कहो, तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो, इसलिए ओवरथिंकिंग कर रही हो। अब तक मुझे लगता था मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो सही कहती थी, तुम दोनों एक दूसरे का हिस्सा हो, मंथन ने प्यार से आयु को समझाने की कोशिश की। और देखो ना, किसी ने मुझसे मेरे हिस्से को अलग कर दिया। हॉस्पिटल में इतनी सर्जरी करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आंखों के सामने किसी की जान गई। मैं और अयान सब संभाल लेते हैं, मुझसे नहीं होता तो अयान सब कर लेता है। देखो ना, पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखा तो अपने ही हिस्से को, किसी की अनसक्सेसफुल सर्जरी की तो अपनी बहन की, उसके साथ साथ गलती हमारी भी उतनी है, हम उसे बचा नहीं पाए। आयु आरव के साथ साथ खुद को भी उतना ही दोषी मान रही थी। मंथन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आयु से अलग होकर कहा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, बस इतना है कि तुम्हें इस सबसे बाहर निकलना होगा, तुम उम्र भर इस गिल्ट में नहीं रह सकती। और मुझे पता है वो कैसे होगा, जब तक मैं उसे इंसाफ नहीं दिला देती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, आयु ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। वो दोनों काफी देर से बाहर थे, वहीं संडे होने की वजह से आज मंथन को काफी मुश्किल के बाद साक्षी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। आयु का कॉल आने के बाद वो सीधा उसके पास आ गया था। मंथन ने घड़ी में टाइम देखा और आयु से कहा, पता है आज साक्षी दीदी ने खाने में काफी कुछ स्पेशल बनाया है, हम दोनों को संडे को ही टाइम मिलता है तो बस कुकिंग करने में लग जाते हैं, चलो घर चलते हैं। आयु को भी इस वक्त किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, जो इन दिनों उसे साक्षी और मंथन से मिल रहा था। आयु ने बिना हिचकिचाई तुरंत हाँ कह दी। वो आजकल मंथन के साथ सभी इमोशनल मोमेंट स्पेंड कर रही थी, इस वजह से मंथन भी उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। आयु के हाँ कहते ही मंथन ने मुस्कुराकर कहा, ये हुई ना बात। कुछ ही देर में वो दोनों मंथन के घर पर थे, लेकिन जब मंथन और आयु घर पहुंचे तो वहां मंथन के पेरेंट्स मिस्टर निशांत आहूजा और पूजा आहूजा आए हुए थे। उन्होंने पहली बार मंथन को किसी लड़की के साथ देखा था। आयु को मंथन के साथ देखकर उनके चेहरे के भाव कुछ खास नहीं थे।